तो इस प्रकार दो इतिहास बताए, भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य इस भागवत कथा के द्वारा प्रसन्न हुए और प्रेत योनि में गए हुए धुंधुकारी का भी उद्धार हो गया इस भागवत के द्वारा। भागवत का श्रवण करने से निश्चित हमारा उद्धार होता है। भागवत सुनने से क्या होता है? भागवत सुनने से जितने काल तक हम भागवत सुनते हैं उस काल तक हमें सुख मिलता है, उतने काल तक भक्ति होती है। और भागवत सुनने के बाद इस भागवत के उपदेश को जीवन में उतारा जाए तब भी हम सुखी हो जाते हैं और मरने के बाद भी हम सुखी हो जाते हैं। भागवत सुनने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि हम लोग भागवत ही क्यों सुने, वेद व्यास जी ने तो अन्य 17 पुराण लिखे हैं, शिव पुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, नरसिंह पुराण, वेद व्यास जी ने अनेक पुराणों लिखे हैं, भागवत ही क्यों सुने? क्या भागवत सबसे श्रेष्ठ पुराण है, सबसे उत्तम है? हां भक्तों, सनातन सत्य बात यह है कि वेदव्यास जी के द्वारा लिखे हुए सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत पुराण है। आप लोग कह सकते हो प्रभु आप तो भागवत की कथा कर रहे हो इसलिए भागवत की महिमा बता रहे हो, जिसका विवाह होता है उन्हीं के गुण गाए जाते हैं, अब शिव पुराण करोगे तो उसकी महिमा गाओगे? नहीं, यहां पर मैं किसी का विवाह कराने नहीं बैठा हूं, इस वेद व्यास की दी हुई व्यासपीठ के ऊपर बैठकर सत्य का निरूपण करने के लिए बैठे हैं। और सत्य ये है, भागवत पुराण जो है महापुराण है, द किंग ऑफ ऑल लिटरेचर, सभी ही वेदों का, सभी शास्त्रों का राजा है श्रीमद् भागवत। कैसे? इसका एक इतिहास सुन लीजिए। देखिए यहां पर कोई भी बात होगी भावुकता नहीं है, सिद्धांत से बात होगी, यहां पर कोई भी बात होगी प्रमाण से होगी, प्रमाणित किया जाएगा। श्रीमद् भागवत ही सबसे श्रेष्ठ है, इसका प्रमाण, इसका प्रमाण आइए इतिहास में, हमारे इतिहास में द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में। आप सब जानते हैं इस जगत में जीने के लिए शास्त्र को पढ़ना बहुत आवश्यक है, वेदों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। बिना वेद और शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन नहीं बिताएंगे तो अधोगति की ओर चले जाएंगे। शास्त्र के बिना जीवन नहीं चल सकता है। शास्त्र और शस्त्र में कोई अंतर नहीं, जिस धातु से शस्त्र शब्द बना है उसी धातु से शास्त्र शब्द बना है। जैसे शस्त्र के द्वारा इस संसार की वस्तु को काटा जा सकता है, वैसे शास्त्र के द्वारा अज्ञान को काटा जा सकता है। शास्त्र चाहिए, परंतु द्वापर युग तक ये सारे शास्त्र स्मृति में थे। स्मृति माने जानते हैं, लिखा हुआ नहीं था। द्वापर के पहले, द्वापर युग के पहले ये सारे शास्त्र, गुरु ने इस शिष्य को कहा, इस शिष्य ने उनके शिष्य को, वैसे स्मृति में सब लोग याद रख लेते थे। परंतु कलयुग में याद रखने की शक्ति किसी को है नहीं है। परसों कौन सी सब्जी खाई थी याद है दोपहर को किसी को? नहीं। खैर यहां तो आलू और गोभी की खाते इसलिए याद रह सकता है। यहां तो प्राय एक ही, लेकिन वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ का भोजन, यहाँ की मर्यादा, माताओं ने अपने सिर पर डाल कर रखा है। वास्तव में हम बहुत खुश हैं। हमारे शहरों में तो सब लोग बिगड़ गए हैं, सब लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपना कर वो सोचते हैं कि हम लोग प्रगति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, लेकिन दुर्गति के पंथ पर हैं। आज यहाँ पर भी संस्कृति है। द्वापर युग के प्रारंभ में, कलयुग के प्रारंभ में, द्वापर के अंत तक सब स्मृति में था, परंतु कलयुग में किसी को याद नहीं रहता है। प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयह मंद भाग्य उपद्रुता। भगवान ने सोचा कि बिना शास्त्र के कोई सुखी नहीं हो सकते हैं, बिना शास्त्र के मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और कलयुग में शास्त्र को याद रखना बहुत मुश्किल है, अब क्या करें। तब भगवान ने एक अवतार लिया जिस अवतार का नाम वेद व्यास। और भगवान ने क्या सोचा, माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान, माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान, माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाए केल जीवेर कृपाए केल कृष्ण वेद पुराण, माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान, माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। भगवान ने सोचा संसार कलयुग के लोग माया में फंसे हुए हैं, उसे स्मृति का ज्ञान हो नहीं सकता है, उसे याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए वही भगवान वेद व्यास जी के रूप में आए। और भगवान वेद व्यास जी ने सभी शास्त्रों को लिपिबद्ध किया, लिखा। बद्रीनाथ में बैठकर, बद्रीनाथ नामक धाम में वेद व्यास जी बोल रहे थे और गजानन गणपति महाराज को बुलाए उसे लिखने के लिए। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जांबू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजानन गणपति महाराज को लिखने के लिए बिठाए, वेद व्यास जी बोल रहे हैं, समस्त शास्त्र को लिपिबद्ध करने के लिए वेद व्यास जी बैठे हैं। वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, चार वेद को लिख दिया, ऋग्वेद साम वेद यजुर्वेद अथर्व वेद, चारों वेदों को लिख दिया। तत्पश्चात उस वेदों को समझने के लिए वेद व्यास जी ने 108 उपनिषद को लिख दिया, और उस उपनिषद को समझाने के लिए वेद व्यास जी ने रामायण महाभारत की रचना की, और उसे समझाने के लिए वेद व्यास जी पुराणों की रचना करने लगे, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, वामन पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, अनेक अनेक पुराण वेद व्यास जी लिखे, और ये सब कुछ लिखकर 17 पुराण की रचना करके वेद व्यास जी बैठे, परंतु वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। देखिए हमारा इतिहास, शांति नहीं मिली वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी स्वयं नहीं समझ पाए, मैंने जीवों के कल्याण के लिए इतना इतना लिख दिया परंतु मेरा कल्याण नहीं हुआ, जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है? जिस रचना से, जिस पुराणों से मुझे शांति नहीं मिली, दुनिया को कैसे शांति मिलेगी? खुद स्वयं इस बात को समझ नहीं पाए, तब वेद व्यास जी बद्रिकाश्रम में, शम्य प्राश नाम के आश्रम में, उस अलकनंदा की पवित्र धारा में स्नान करके वेद व्यास जी बैठे थे और चिंतित थे, कलयुग में आने वाले जीवों के लिए मैंने 17 पुराण लिख दिए, शिव पुराण लिखा, देवी पुराण लिखा, स्कंद पद्म अनेक पुराण लिखे, और उस पुराण से मैं खुद सुखी नहीं हुआ, कलयुग के लोग कैसे सुखी हो पाएंगे? उसी समय भगवान के मनो अवतार 2400 घंटा अपने हाथ में वीणा बजाने वाले नारद जी आकाश के मार्ग से आए। वेद व्यास जी ने नारद जी का स्वागत किया और जैसे एक बीमार व्यक्ति अपना हाथ किसी डॉक्टर के हाथ में दे देता है भक्तों, वैसे वेद व्यास जी ने अपने दोनों हाथ नारद मुनि के चरणों में रख दिए। कहा, गुरु जी मैंने 4 वेद लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, रामायण महाभारत 17 पुराण की रचना मैंने कर दी, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। गुरु जी अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब नारद जी ने इतना ही कहा कि नारद, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए तुमने जीवों के कल्याण के लिए बहुत कुछ लिखा, परंतु तुमने जो लिखा है यह कलयुग में झगड़े का कारण बनेगा। कलयुग के झगड़े का कारण तुम्हारे मस्तक पर आया है, इसलिए तुम सुखी नहीं हो। बोले, ऐसा मुनिवर? ये कैसे? बोले, तुमने शिव पुराण लिखा जिसमें लिखा कि शिव जी ही श्रेष्ठ हैं, शिव जी भगवान, शिव जी ही सब कुछ है। तुमने देवी पुराण लिखा उसमें लिखा देवी ही सब कुछ है, देवी ही संसार का सर्जन पालन प्रलय। गणेश पुराण लिखा तो गणेश जी सब कुछ, गणेश जी महान। सभी पुराण में अपने अपने पुराणों के देवताओं की महिमा बताई। कलयुग में सब लोग जब आपस में मिलेंगे, शिव पुराण वाले कहेंगे शिव जी भगवान, गणेश वाले गणेश जी भगवान, देवी वाले कहेंगे देवी भगवान, आपस में झगड़ा करेंगे और झगड़े का फल वेदव्यास जी तुम्हारे मस्तक पर आया है, इसलिए तुम सुखी नहीं हो। और कलयुग में और क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना। तब गुरु जी क्या करूं, आप यह बताइए मैं क्या करूं, मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई। तब नारद जी कहते हैं कि शिव जी के बारे में लिखा, देवी देवताओं के बारे में लिखा, ब्रह्मा जी के बारे में लिखा, गणेश जी के बारे में, परंतु ये सभी के ईश्वर, देवताओं के भी ईश्वर, देवेश्वर जिसे कहा जाता है, उस भगवान श्री कृष्ण बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, जिसकी एक भ्रिकुटी से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जन पालन और प्रलय हो सकता है, उस भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला रचित श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक वेद व्यास जी तुम भी सुखी नहीं हो सकते हो और कलयुग के लोग भी सुखी नहीं हो सकते हैं। वेद व्यास जी, यदि आपको सुखी होना है भागवत की रचना करो, ग्रंथ राज भागवत की रचना करो, और कलयुग के लोगों को सुखी करना है वे भी भागवत को सुनकर ही सुखी हो पाएंगे। भक्तों, हमारा इतिहास, वेद व्यास जी ने अपने जीवन में अंतिम ग्रंथ यह भागवत लिखा है। कई बार लोग कहते हैं शिव पुराण श्रेष्ठ है कि भागवत पुराण श्रेष्ठ है, दोनों वेद व्यास जी ने लिखे, गलत कोई नहीं है, लेकिन जब दो चीज आती हैं तब कंपैरिजन होती है श्रेष्ठ कौन सा। तब भक्तों, ये दोनों में से श्रेष्ठ कौन, आप अपनी बुद्धि से समझ सकते हो, भागवत जब तक वेद व्यास ने नहीं लिखा तब तक वे सुखी नहीं हुए, परंतु जैसे ही भागवत लिखा वेद व्यास ही सुखी हो गए। कौन श्रेष्ठ है? भागवत। और जिस पुराण में, जिस ग्रंथ में भगवान की लीला की कथा नहीं होती है, वह ग्रंथ जो है कौवे का तीर्थ माना जाता है। और भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन है। इस प्रकार भागवत श्रेष्ठ पुराण। और एक सिद्धांत के अनुसार भी आपको बताया जाए, कुछ लोग कहेंगे वेद व्यास जी नहीं लिखा है, शिव जी बड़े, शिव शिव पुराण श्रेष्ठ, देवी पुराण श्रेष्ठ, ये सारी बात सही है, वेद व्यास जी ने लिखा, लेकिन वेद व्यास जी ने अंत में क्या लिखा? एक सिद्धांत के अनुसार मैं आपको बताऊं, मान लो कोई व्यक्ति यदि कहे, एक कागज में मान लो किसी ने लिखा हो कि मान लो प्रकाश नाम का जो लड़का है बहुत बुरा है, उनका आचरण बहुत बेकार है, उनके साथ कभी मत रहना, उनके साथ बात भी मत करना, उनकी ओर कभी देखना भी मत, और फिर अंत में कहा जाए, लिखा जाए कि नहीं नहीं मैं तो गलत कह रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। अब इस बात का सार क्या है आप बताइए? क्या प्रकाश बुरा लड़का है? क्या प्रकाश की ओर कभी देखना नहीं? आगे बहुत कुछ बताया, लेकिन अंत में जो लाइन लिखी गई वो सारी बातों का सार है। बात समझ में आ रही है? वैसे वेद व्यास जी ने बहुत कुछ लिखा, चार वेद, 17 पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण, पद्म स्कंद, मत्स्य, अनेक पुराण लिखा, लेकिन वेद व्यास जी ने अंत में क्या लिखा? भागवत महापुराण। इसलिए भागवत महापुराण जो है सभी पुराणों का सार है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुका दये अमृत द्रव संयुतम। श्रीमद भागवत जो है निगम कल्प तरो, सभी आगम निगम, सभी वेद शास्त्र का पका हुआ फल है। और सुख मुका दये, आप फल को तो जानते हैं, आम्र फल, मैंगो कितना अच्छा लगता है, और उसमें भी पक जाए तब तो और मधुर, और उसमें भी तोते ने उसे स्पर्श कर लिया है तब तो और भी मधुर। ये भागवत जो है पका हुआ फल है, और उसमें सुखदेव गोस्वामी के रूपी तोते ने स्पर्श कर लिया तब तो मधुराती मधुर है। और यह भागवत एक ऐसा फल है जिसमें न तो गुठली है न छिलका है। इसलिए पिबत भागवतम, इस भागवत को खाना नहीं है, इस भागवत को पीना है। कब तक? बोले रसमालयम, जब तक मृत्यु न आ जाए भागवत को पीते रहिए। यदि भागवत को आप पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, हृदय में शांति हो जाएगी, इस जीवन में भी सुखी हो जाओगे और मरने के बाद भी सुखी हो जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम हरे। भक्तों, इस प्रकार सभी पुराणों में भागवत पुराण जो है सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसे भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, प्रतिदिन दोपहर को 1 बजे यहाँ पर सत्र प्रारंभ हो जाएगा और ठीक 4 बजे ये सत्र समाप्त हो जाएगा। आप सब भक्तों को निवेदन है, समय से यहाँ पर आप हाजिर हो जाइए, कथा को सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। आने वाले दिनों के लिए मैं आप सबको बता दूं, क्योंकि हम शिव जी के क्षेत्र में बैठे हैं, बिलेश्वर महादेव के चरण कमल की छत्र छाया में बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर एक विशेष कथा होगी, शिव जी की कथा होगी भागवत के चतुर्थ स्कंद से। और बहुत सुंदर शिव जी का गृहस्थ जीवन, शिव जी का चरित्र, बहुत सुंदर कथा आएगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है, समय से आ जाइए, कथा में, कीर्तन में और भगवत प्रसाद में लाभ लीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।